मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको मेरा पिछला एपिसोड संभवतः याद होगा, मैंने उसमें प्री एग्जामिनेशन में कैसे हम तर्क का प्रयोग करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं इसके बारे में कुछ बातें की थी, और साथ ही साथ मैंने एक प्रश्न भी आप लोगों को दिया था इस अनुरोध के साथ कि इस प्रश्न पर आप सब विचार करें और देखें कि विचार कर करके आप इसके सही उत्तर तक अपने आप को पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ने उस एपिसोड की सराहना की, उस पर विचार किया और विचार करने के बाद वे सही उत्तर तक पहुंच गए। कुछ नहीं भी पहुंचे कोई बात नहीं। देखिए, तर्क तो एक ऐसी क्षमता है जो अचानक नहीं आएगी, किसी में आ भी जाएगी किसी में नहीं भी आएगी, ये अभ्यास की बात है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते चले जाएंगे आपके दिमाग को तर्क करने की उतनी ही अधिक आदत पड़ती चली जाएगी, और केवल आदत ही नहीं पड़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि बहुत तेजी के साथ आप सोच सके, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको 100 प्रश्न हल करने हैं और वह भी 120 मिनट में। तो आप बहुत ज्यादा लिबर्टी तो नहीं ले सकते कि आराम से सोच रहे हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, परीक्षा हॉल से निकलने के बाद हम बहुत से प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग पर अब थोड़ा सा तनाव कम हो गया है, थोड़ा सा समय भी ज्यादा हो गया है, तो हमारा दिमाग उन्हीं उत्तरों को सही तरीके से सोच लेता है जो अदरवाइज परीक्षा हॉल में वो नहीं सोच पाया था। ऐसा क्यों? ये स्पीड की बात है। अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिमाग के सोचने की जो गति है वो भी बहुत तेज हो जाएगी। तो आइए अब मैं बात करता हूं जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, उस प्रश्न को हम कैसे तर्क के आधार पर हल करेंगे। मुझे लगता है कि इतना तो आपको विश्वास हो गया होगा कि इसके जो तीन स्टेटमेंट हैं, उन तीन स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट तो कम से कम ऐसे हैं जिनके बारे में आपको किताब में पढ़ने को शायद ही मिले। जो तीसरा स्टेटमेंट है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है, ये हो सकता है कि आपको किताबों में मिल जाए, लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट के बारे में आप कैसे सही उत्तर तक पहुंचेंगे? देखिए, अब मैं तर्क के जो तथ्य होते हैं उन पर कुछ बातें कर रहा हूं कि तर्क आते कहां से हैं। मैं इसे पहले आपको बता चुका हूं कि ये कतई मत समझिएगा कि तर्क हवा से पैदा होते हैं, नहीं, तर्क के लिए भी कंटेंट चाहिए, हमारे दिमाग में तथ्य तो होने चाहिए ना, उन तथ्यों को ही फिर जोड़कर गुणा भाग करके घटा करके तब कहीं हम सही उत्तर तक अपने आप को पहुंचा पाते हैं। तो इसके बारे में बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव किस तरीके से होते हैं यह आपको मालूम हो। अगर यही नहीं मालूम है तो फिर कोई फायदा नहीं इस पर तर्क का इस्तेमाल करने से, आप सोच ही नहीं पाएंगे, राइट? अब देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। क्या आपको ये व्यावहारिक लगता है? कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, किसी ने उस चुनाव को न्यायालय में चुनौती दे दी कि भाई गलत तरीके से चुनाव हुआ, ठीक है, उच्चतम न्यायालय उस पर सुनवाई करता रहा और एक साल दो साल के बाद उसने फैसला कर दिया कि नहीं, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, ये अवैध है, खत्म, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना वो शून्य हो गया। अब ये जो बीच का समय था 1.5 साल 2 साल पहले का, उस समय राष्ट्रपति जी ने निर्णय तो लिए ही होंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, तो क्या वो सारे के सारे निर्णय बेकार हो जाएंगे? अब इसके बारे में आप कैसे सोचेंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसा किया जाना व्यावहारिक होगा कि राष्ट्रपति ने जितने निर्णय लिए हैं उन सबको आप शून्य कर दें, उन सबको आप पलट दें और फिर से पुरानी स्थिति में आ जाएं? सोच करके देखिए, राष्ट्रपति के बारे में, किसी के बारे में भी सोच लीजिए, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स ही क्यों ना हो, क्या उनके शून्य किए जाने से पहले, यानी कि उनकी पात्रता को रद्द किए जाने से पहले उन्होंने जो भी फैसले किए वो शून्य हो जाएंगे? तो जब व्यावहारिकता के स्तर पर आप सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये व्यावहारिक ही नहीं, आप करेंगे कैसे ऐसा, प्रैक्टिकली आप कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, फिर जो दूसरा स्टेटमेंट है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुल्तवित किया जाता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। देखिए, अब होता क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो हमारे राज्य के विधानमंडल हैं वो भी भाग लेते हैं, बकायदे जो विधानसभाएं हैं उसके जो सदस्य होते हैं एमएलए, वे भी भाग लेते हैं, वे भी मतदान करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मतदान करते हैं। तो यहां आपको इस स्टेटमेंट में उलझाने की कोशिश की गई है कि भाई मत देने का अधिकार सभी एमएलए को है और कुछ जगह विधानसभाएं खत्म हो गई हैं, मतलब अभी विघटित हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में उस राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि एमएलए ही नहीं है तो वहां के एमएलए वो मतदान कर नहीं सकेंगे। तो क्या फिर वेट किया जाए कि भाई इस राज्य की विधानसभा के चुनाव हो जाए, एमएलए चुनकर आ जाए, फिर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए? इसकी व्यावहारिकता पर सोचिए। मजेदार बात है कि जब क्रोनोलॉजिकली आप राष्ट्रपति कब कब कौन कौन बना है तो आप देखिए कि उसकी डेट बिल्कुल मैच करती जाती है। जैसे ही एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है ठीक उसी समय दूसरा नया जो राष्ट्रपति है वो पद की शपथ ले लेता है। ये आपको दिखाई देगा। यदि आप इसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि भाई अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव किसी भी कारण से निरस्त किए गए हो, पोस्टपोन किए गए हो। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि हमारे देश में इतने राज्य हैं, उन राज्यों की कोई विधानसभा विघटित हो लेकिन चुनाव हुए। इसे आप इस तर्क के आधार पर भी सोच सकते हैं कि भाई चलिए विधानसभा तो काम कर रही है लेकिन हो सकता है कि उसमें 5-10 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एमएलए नहीं है, किसी ने त्याग पत्र दे दिया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, कुछ भी बात हो सकती है। तो इसका मतलब है कि उन्हें भी मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है? तो आपको लगेगा कि नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से यह भी सही मालूम नहीं पड़ रहा है, यह भी व्यावहारिक नहीं है। देखिए यहां मैंने जो दोनों पॉइंट्स आपको बताए हैं वो व्यावहारिकता के स्तर पर बताए हैं और वो यही चेक करना चाह रहा है यूपीएससी। यहां जो चेक करना चाह रही है वो यही कि आपने किताबों में तो पढ़ लिया है, अनुच्छेद आपको मालूम है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको मालूम है, लेकिन उसका जो व्यावहारिक पक्ष है वो आपको मालूम है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उससे आप जानते ही नहीं है, उसकी आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सीधी सीधी सी बात है कि वो इन्हीं के बारे में जानना चाह रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि तर्क को आधार बना करके जो मैंने अभी बातें कही हैं डेफिनेटली उससे आपको कुछ न कुछ मदद तो मिली होगी कि तर्क आते कैसे हैं। हालांकि मैंने तीसरा स्टेटमेंट जानबूझ करके छोड़ दिया है क्योंकि इसके बारे में पुस्तकों में पढ़ने को मिल जाता है। देखिए सीधी सी बात है कि अपनी अनुमति देनी होती ही है, राष्ट्रपति को अनुमति तो देनी ही होती है। रबर स्टैंप है राष्ट्रपति, इसके बारे में हमेशा बात होती रहती है, परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, वो खासकर ग्रेजुएशन के लेवल पर। आपके यूपीएससी में तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार नहीं है। लेकिन यहां जो बात कही गई है वो है समय सीमा के अंदर। तो क्या राष्ट्रपति के लिए ये समय सीमा निर्धारित की गई है कि यदि संसद उसके पास कोई भी विधेयक भेजता है तो 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, इतने दिनों के अंदर उन्हें उस विधेयक को अनुमति देनी होगी या उसके बारे में निर्णय लेना होगा? आपको यह बात किसी भी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिली होगी। हो सकता है कि आपको यह भी पढ़ने को न मिले कि समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, हो सकता है कि ये पंक्ति भी न हो। तो होता क्या है कि जो इस तरह के प्रश्न होते हैं वो बेसिकली आपके साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं, मनोविज्ञान को चेक करते हैं कि आप कितने भ्रमित हो जाते हैं, चीजों के बारे में आपके दिमाग में कितनी अधिक स्पष्टता बनी हुई है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उनका व्यावहारिक पक्ष आपको मालूम है या नहीं है, आपको किस तरीके से शब्दों के भूल भलैया में घुमाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है। इन सारी बातों को ये जो प्री एग्जामिनेशन है ये चेक करता है और बिना इसके गुजारा भी नहीं है। देखिए रिजल्ट आ चुके हैं इस बार के, जो सेकंड पोजीशन पर इस बार आए, जिनकी रैंक सेकंड है, उनका एक बहुत बड़ा यूट्यूब पर प्रोग्राम आ रहा है, वो काफी डिटेल में है। उन्होंने ये बात बहुत जोर देकर के कही है कि यदि आपको प्री एग्जामिनेशन का पेपर मिले तो हार्डली आप सीधे सीधे अपनी जानकारी के आधार पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ 35-40% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 35-40 से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तो। इतने में तो सिलेक्शन नहीं होगा, देखते हैं अभी कट ऑफ मार्क्स आने हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब है कि जो मैं तरीके बता रहा हूं इसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। इसलिए दोस्तों इस तरह के विषयों को लेकर के मैं जो भी आपको एपिसोड प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए इस तरह के एपिसोड को लेकर के मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज आप उन्हें ध्यान से सुने, एक ही बार नहीं कई कई बार सुने, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में रच बस जाएं। तो दोस्तों, फिलहाल इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।